11 सितंबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक और शिखर बैठक की तैयारी।
The primary purpose of the letter was to request and look to
तेलंगाना में एक बस दुर्घटना में 46 लोगों की मौत। आपकी मुलाकात कराएंगे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से।
ये नहीं है कि हम सरकार बनी है और तब हम गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी की सरकार है, मैंने आज से नहीं, मैंने 3 साल पहले कहा था, इस सरकार में कोई वैकेंसी है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर पद का कोई वैकेंसी नहीं है, बिना मतलब ये लोग हाथ पांव क्या कहते हैं भांज रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमेरिका ने बताया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद फॉलो अप मीटिंग के लिए खत लिखा है। अमेरिका का कहना है कि वो पहले से ही एक नई मीटिंग तय करने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स का कहना है कि उत्तर कोरिया की तरफ से ये खत दिखाता है कि वो परमाणु मुक्त होने को लेकर प्रतिबद्ध है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में सड़क परिवहन निगम की एक यात्री बस आज खाई में गिर गई। इस हादसे में 53 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इस बस में सवार यात्री एक धार्मिक स्थल से लौट रहे थे। अभी तक हादसे के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। रूस और चीन की सेनाओं के बीच पहली बार सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। दशकों बाद रूस ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को किसी सैन्य अभ्यास में शामिल किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों रूस के दौरे पर हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का कहना है कि मौजूदा वक्त में रूस के साथ बेहतर संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि चीन और रूस के बीच आपसी संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हम लोग एक व्यापक परिदृश्य में बातचीत कर रहे हैं। हमने व्यापारिक सहयोग के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में एक दूसरे का सहयोग करने पर भी चर्चा की है। यह सब बेहद महत्वपूर्ण है और इसका फायदा आने वाले कई दशकों तक हमें मिलेगा। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज का लंदन में निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थीं और लंदन में उनका इलाज चल रहा था। जुलाई महीने तक नवाज शरीफ उनके ही साथ थे। इसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने पर वे अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान लौट आए थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुलसुम नवाज के निधन पर दुख प्रकट किया है। यूरोपीय संसद में बहस चल रही है कि क्या हंगरी पर यूरोपीय संघ के नियम तोड़ने के आरोप में प्रतिबंध लगाने चाहिए या नहीं। इस साल की शुरुआत में एक संसदीय रिपोर्ट में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान और उनके प्रशासन पर न्यायालय की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के आरोप भी लगे हैं। इस बहस में शामिल यूरोपीय संसद में डच ग्रीन के सदस्य जूडिथ सर्गेंटिनी ने कहा है,
It is indeed not a fully functioning democracy. It's been sliding down.
निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि वहां लोकतंत्र पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। पिछले 8 सालों में हंगरी में नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ है, लोगों को खुलकर बोलने में मुश्किलें आ रही हैं, विपक्षी दल निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल यह कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र में गिरावट आई है। ये थे यूरोपीय संसद में डच ग्रीन सदस्य जूडिथ सर्गेंटिनी के शब्द। जिम्बाब्वे सरकार ने राजधानी हरारे में आपातकाल की घोषणा की है। हरारे में हैजे की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है और 2000 से अधिक लोग इसके संक्रमण से पीड़ित बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह बीमारी अब हरारे से बाहर भी फैल गई है। जिम्बाब्वे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस बीमारी से बाहर निकलने में लोगों की मदद के लिए कोशिशें कर रही है। दक्षिण अफ्रीका की संसद ने अपने देश में अपराध से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार दक्षिण अफ्रीका में हर दिन औसतन 57 लोगों की हत्या होती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का एक और पत्र मिला है। व्हाइट हाउस ने इस पत्र को गर्मजोशी से भरा बताया है, जिसमें किम जोंग उन ने ट्रंप के साथ एक और बैठक की पेशकश की है। अब ट्रंप प्रशासन दोनों नेताओं के बीच एक और बैठक की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए नए पत्र से व्हाइट हाउस भी खासा खुश नजर आ रहा है और इसको ट्रंप की उत्तर कोरिया के प्रति नीति की कामयाबी के एक और सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सैरा सैंडर्स का कहना था कि किम जोंग उन का खत बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ था।
It was a very warm, very positive letter. We won't release the full letter unless the North Korean leader agrees that we should. The primary purpose of the letter was to request and look to schedule another meeting with the president.
सैरा सैंडर्स कह रही थी कि हम अभी वो पत्र सार्वजनिक नहीं कर सकते जब तक कि उत्तर कोरिया के नेता इस पर हामी नहीं भर देते। इस पत्र का मुख्य मकसद था किम जोंग उन की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक और बैठक की मांग। हम एक और बैठक के लिए तैयार हैं और हमने इस सिलसिले में काम करना भी शुरू कर दिया है। सैरा सैंडर्स ने यह भी कहा कि हाल में जो परेड उत्तर कोरिया में की गई उसमें परमाणु हथियारों पर जोर नहीं था। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नीतियों में काफी कामयाबियां हासिल की हैं और ये जो नया पत्र मिला है ये दोनों नेताओं के बीच संबंधों में प्रगति का एक और सबूत है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने इस सिलसिले में कई चीजें गिनाई भी, जिनमें उत्तर कोरिया द्वारा अमरीकी सैनिकों के कुछ अवशेष वापस किया जाना और ट्रंप और किम जोंग उन के बीच पहली बैठक के बाद से अब तक उत्तर कोरिया द्वारा कोई मिसाइल परीक्षण न किया जाना भी शामिल है। उत्तर कोरिया का 70वां स्थापना दिवस 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर को ही मनाया गया, लेकिन इस मौके पर उत्तर कोरिया ने इस बार मिलिट्री परेड में किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन नहीं किया। माना जा रहा है कि जून में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई शिखर वार्ता के बाद किम जोंग उन ने मिसाइलों का प्रदर्शन न करने का फैसला लिया। पहली शिखर वार्ता में ट्रंप और किम जोंग उन के बीच 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान मारे गए अमरीकी सैनिकों के अवशेष भी वापस अमरीका भेजे जाने पर भी बात हुई थी। उत्तर कोरिया ने जुलाई महीने में अमरीकी सैनिकों के अवशेष वाले 55 डिब्बे अमरीका को भेजे थे और अमरीकी सेना का कहना है कि उनमें से 2 अमरीकी फौजियों की पहचान कर ली गई है। अमरीका का मानना है कि कोरियाई युद्ध के दौरान उसके 7,699 फौजी लापता हो गए थे। उस युद्ध में अमरीका के 5,300 फौजी मारे भी गए थे। ट्रंप और किम जोंग उन ने पहली बैठक के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निशस्त्रीकरण पर काम करने की बात की थी, मगर इस सिलसिले में कोई न तो समय सीमा दी गई थी और न ही इसकी विस्तृत जानकारी ही दी गई। पिछले महीने जब अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उत्तर कोरिया के दौरे पर निकलने ही वाले थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट में यह लिखा कि पोम्पियो का दौरा उन्होंने रोक दिया है क्योंकि उत्तर कोरिया की तरफ से परमाणु निशस्त्रीकरण के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यह पहले ही कहा था कि उत्तर कोरिया के परमाणु निशस्त्रीकरण के सिलसिले में एक बैठक से काम नहीं चलेगा और उनकी किम जोंग उन के साथ कई और बैठकें हो सकती हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब कुछ खबरें भारत से। तेलंगाना के जगतियाल जिले में सड़क परिवहन निगम की एक यात्री बस सड़क से फिसलकर घाटी में गिर जाने के कारण 40 से ज्यादा यात्रियों के मरने की आशंका है। इसके अलावा हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बस कोंडागट्टू से जगतियाल लौट रही थी। बस शनिवार पेट गांव के नजदीक घाट रोड पर फिसल गई और घाटी में गिर गई। थोड़ी देर पहले मैंने हैदराबाद फोन कर उमर फारूक से संपर्क किया और घटना का विवरण मांगा।
जी, तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस जो है वो एक मंदिर की जगह है, बहुत ही लोकप्रिय है, वहाँ कोंडागट्टू उसका नाम है, वहां से ये बस जगतियाल आ रही थी और रास्ते में जो घाट सेक्शन है वहां पर लगता ये है कि जो रिपोर्ट है उससे लगता ये है कि ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था बस के ऊपर और ये खाई में गिर पड़ी और इससे जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 46 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत बहुत नाजुक है। ये सड़क जो है इससे पहले भी वहां इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी थी तो बड़ी गाड़ियों के लिए इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अब ये बस उस रास्ते से आई है और कहा यह जा रहा है कि इसका कारण ये था कि 5 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता अगर वो दूसरे सुरक्षित रास्ते से आते, और चूंकि इसमें ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है, ज्यादा डीजल लगता, तो आरटीसी के जो अधिकारी है उन्होंने अनुमति दी थी कि ये बस इसी रास्ते से चलाई जाए, तो इसका एक कारण ये बताया जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि जब अचानक झटके से गाड़ी रुकी तो बस के अंदर उसकी गुंजाइश से दुगने लोग थे, उसमें 40 लोग बैठ सकते हैं, 70 से ज्यादा यात्री उसमें यात्रा कर रहे थे और उनमें से कई लोग ड्राइवर के ऊपर गिर गए और ड्राइवर संभल नहीं सका और इसके चलते ये दुर्घटना हुई है। काफी शोक का माहौल है जगत्याल में, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं के लोग हैं, 25 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं जो लोग मरे हैं।
ये थे हैदराबाद से उमर फारूक। और इस बीच खबर आ रही है कि इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा, न संसद के भीतर और न ही बाहर। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व केंद्र मंत्रियों ने फ्रांस की विमान कंपनी दसों से हुए 36 विमानों के सौदे में घोटाले का आरोप लगाया। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी सरकार के ऊपर और कई तरह के मामलों में भी बोलते रहे हैं। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
यूं तो फ्रांसीसी विमान कंपनी दसों से हुए लड़ाकू विमानों के सौदे में घोटाले के आरोप अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा और दूसरे लोग पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। जो कुछ हुआ है उससे ये साफ हो जाता है कि इसमें व्यक्तिगत तौर पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री का हाथ है, इस बात से किसी तरह से बचा नहीं जा सकता है। ये थे अरुण शौरी के शब्द। शौरी ने कहा कि ये बातें वो इस मामले पर उपलब्ध हुए नए दस्तावेजों के आधार पर कह रहे हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को 15 पन्नों की प्रेस रिलीज और कुछ दस्तावेज भी दिए गए। अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और मशहूर वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दी गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस पूरे सौदे में, जिसे लेकर 6-7 सालों से फ्रांस और भारत में बात जारी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी के सलाह के बदलाव कर दिया। न सिर्फ विमान की कीमत 1,000 करोड़ रुपए ऊपर चली गई, बल्कि सौदे को 126 लाखों विमानों से घटाकर महज 36 विमानों पर ला दिया गया। साथ ही सौदे में एक भारतीय विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को निकालकर वो काम रिलायंस को दे दिया गया। अनिल अंबानी की यह कंपनी सौदा मिलने के कुछ दिन पहले ही पंजीकृत हुई थी, ऐसा दावा घोटाले का आरोप लगाने वाले करते रहे हैं। शौरी ने यह भी कहा कि रक्षा सौदे में यूं ही बदलाव नहीं किए जा सकते और इसके लिए फौज की एक प्रक्रिया तय है। जो समिति इस काम के लिए बनी होती है उसमें फौज या वायुसेना या नौसेना का प्रमुख शामिल होता है, साथ ही इसमें रक्षा सचिव, R&D सेक्रेटरी, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, रक्षा विभाग के वित्त प्रमुख और दूसरे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन इन सभी लोगों की किसी तरह की कोई बैठक हुई हो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये थे अरुण शौरी के शब्द। प्रशांत भूषण ने राफेल विमान की कीमत का सवाल उठाया। सरकार कहती रही है कि वो विमान की कीमत नहीं बता सकती क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच सौदे को लेकर गोपनीयता की शर्त है। हालांकि मशहूर वकील का कहना था कि सरकार खुद पहले कई मौकों पर इसकी बात कर चुकी है और अब हंगामा होने पर मामले को रफा दफा करना चाहती है।
10 अप्रैल को प्रधानमंत्री साइन करते हैं ये एग्रीमेंट हॉलैंड से, 13 तारीख को पारिकर कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई 126 क्यों हटा दिए, 36 क्यों कर दिए, कहते नहीं नहीं 126 तो बहुत महंगे होते, सब कुछ मिलाकर उसका प्राइस 90,000 करोड़ होता, यानी कि 715 करोड़ एक हवाई जहाज का दाम। फिर पार्लियामेंट में नवंबर 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कह जाते हैं कि भाई ये 36 हवाई जहाज 670 करोड़ पर हवाई जहाज आ रहा है।
हाल में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है कि अनिल अंबानी की फिल्म कंपनी ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद की गर्लफ्रेंड की फिल्म फाइनेंस करने का सौदा उसी समय किया था। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा दूसरे बड़े कांग्रेस के नेताओं की याचिका को खारिज करने के बाद नेशनल हेराल्ड मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इन नेताओं ने अदालत से आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान हुए इनकम टैक्स असेसमेंट का पुनरावलोकन करने की पहल को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। मामले को लेकर शुरू हुई राजनीतिक सरगर्मी पर सलमान रावी की रिपोर्ट।
ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय से यह अखबार कांग्रेस का मुख पत्र माना जाता रहा। फिर कांग्रेस के नेताओं ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई अव्यवसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे ऑस्कर फर्नांडिस और कई अन्य लोग निदेशक के रूप में शामिल किए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने आयकर विभाग से सच्चाई छुपाने का काम किया है।
जो इनकम टैक्स जनरेट हुआ था यंग इंडिया से, उसको राहुल गांधी जी ने छुपाने का काम किया, सच्चाई बताई नहीं गई, इसलिए देश का नुकसान हुआ। 2011-12 में यंग इंडिया कंपनी का जो इनकम टैक्स असेसमेंट था, आप जानते हैं, मात्र 68 लाख दिखाया गया और कहां लगभग 300 करोड़ रुपया का इनकम टैक्स का गबन हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला है, जो नियमों के खिलाफ है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस के अध्यक्ष आयकर विभाग से भाग रहे हैं।
इस विषय पर जब इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है, इनकम टैक्स में लोग सावधान होते हैं कि संपत्ति और संपत्ति से आई हुई आय के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट गलत है, तो राहुल गांधी कोर्ट जाते हैं ताकि इनकम टैक्स अपना काम ना कर सके। जिसे प्रधानमंत्री को गले लगाने में कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर से मीलों दूर भागता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज किया। देर से ही सही, लेकिन न्याय कानून एक बार फिर अपना काम कर रहा है।
वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं।
90 करोड़ आय आमदनी, 357 करोड़ टैक्स, ये कौन सा कानून है? मोदी जी, राहुल गांधी जी से लड़िए ना, हम चुनौती देते हैं आपको, पर सामने आकर लड़िए, इनकम टैक्स की पीठ के पीछे से मत लड़िए, सामने आकर लड़ने की हिम्मत दिखाइए।
दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना था कि अगर राहुल गांधी ने अपने आयकर रिटर्न या किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से शेयर खरीदने की बात बताई होती तो ये आयकर विभाग के रिकॉर्ड में होता, जो नहीं किया गया। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भरोसा है कि मोदी सरकार 2019 में वापसी करेगी। उन्होंने BBC को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो NDA के साथ बने हुए हैं और बिहार में सीटों के बंटवारे में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से SC एक्ट में बदलाव के मुद्दे पर देश भर में विवाद देखने को मिला, उसको लेकर BBC संवाददाता प्रदीप कुमार ने रामविलास पासवान से पहला सवाल यही पूछा कि 3 दशक पुराने कानून पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, विवाद के पीछे राजनीति क्या है?
आज क्या कहते हैं कि 30 साल करीब होने चले हैं, 29 साल, तो 29 साल के भीतर में बीच में कभी इसके पर किसी ने ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं कि नहीं किया। 8-8 प्रधानमंत्री बदले, इसमें कहते हैं कोई आदमी गया कोर्ट ने जो है 20 मार्च को जो है सो इस पर एक जजमेंट दे दिया, और इसका जो मूल तत्व था और ये जो एक्ट बना, उस एक्ट से जो संगीन अपराध थे उस तरह के, उसमें भारी संख्या में कमी आई। और इसलिए आप देखे होंगे कि रोहित मोबला का थोड़ा कांड हुआ या ऊना में घटना घटी, काफी क्या कहते हैं कि रिजेंटमेंट हुआ, तो उसमें जो है सो जो है AK गोयल ने जो है उसने जजमेंट दे दिया कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल इसमें क्या कहते हैं दिया जा सकता है। तो उसको लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, SC ST संगठन के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो लोग सड़क पर क्या कहते हैं कि 2 अप्रैल को आ गए। हालांकि इस बीच में सरकार ने 2 अप्रैल को ही जो है रिव्यू पिटीशन भी दायर किया, भी जो है घटना नहीं रुकी, और उसके बाद जो है करीब करीब जो है 12 लोग मारे गए जिसमें 10 शेड्यूल कास्ट के लोग थे। तो उसके बाद जो है सरकार के ऊपर में हम लोगों ने भी दबाव डाला कि ये फिर से क्या कहते हैं कि जो है दोबारा ये लोग आंदोलन नहीं करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, उसमें हम भी थे, लॉ मिनिस्टर वगैरह भी थे, और उसमें ये तय हुआ था कि कोर्ट जल्द से जल्द जो है फैसला दे, और नई कोर्ट फैसला देगा तो फिर हम लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे, पार्लियामेंट से बिल पास करेंगे। और उसके बाद जो है सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार ने जो है सो स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुला करके और सर्वसम्मति से जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है बिल पास हो गया। और उसमें बिल में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इतना ही किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो क्लॉज जोड़ा था, डायल्यूट किया था, सिर्फ उसको हटाया गया। ओरिजिनल एक्ट वही है, उसमें न कोमा फुल स्टॉप, न घटा है न बढ़ा है।
जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि ये पूरा विवाद जो है ये बीजेपी के द्वारा ही खड़ा किया गया।
हाँ, जो बीजेपी के कुछ लोग हैं, एमएलए हैं या कुछ लोग हैं जिनको रिजर्वेशन है, वो बोले हैं बाहर में, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि इसमें धरना में प्रदर्शन में बीजेपी का कोई आदमी साथ नहीं है। और हम ये भी नहीं मानते हैं कि अपोजिशन का जो लोग है उसने उस्काने का काम किया है।
लेकिन पासवान जी, आप जो हैं वो दलितों के कद्दावर नेता हैं, आप जिस सरकार में मंत्री हैं उस सरकार की छवि जो है वो दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बनती जा रही है, बन गई है एक तरह से।
ये सभी 6 महीना पहले थी, 3 महीना पहले छवि थी, और मैंने प्रेस वालों से कहा था कि इस छवि को सुधारना हमारा काम है, क्योंकि जो सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के बीपी सिंह के बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर को है उनका 4 जगह था जहां पैदा लिए थे, मऊ में वहां राष्ट्रीय स्मारक बनाया, 26 अलीपुर रोड में नेशनल म्यूजियम बनाया, मुंबई में जो दीक्षा भूमि है उसको 12 एकड़ जमीन देकर के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया, लंदन में जहां पढ़ते थे वहां जाकर के उस मकान को खरीदा, उसके बाद अम्बेडकर फाउंडेशन बनाया, इसके अलावा इतनी योजनाएं हैं, सब पावर टू द पुअर है, तो वो व्यक्ति जो है दलित विरोधी कैसे हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने आरएसएस का आर लेकर के जो है हमेशा कोशिश किया कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, और हमने कहा उसी समय कहा था नरेंद्र मोदी को जो लोग कहते हैं जो परसेप्शन खराब कर रहे हैं 3 महीना में चेंज होगा, और आज कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए जिसमें कोई दम नहीं है कि बीजेपी के लोग थे, बाकी तो अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि साहब क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऊंची जाति के खिलाफ में है, नरेंद्र मोदी ऊंची जाति के खिलाफ में है, एनडीए सरकार ऊंची जाति के खिलाफ, अब तो ये प्रचार हो रहा है।
रामविलास जी, ये भी तो 2-3 जो हैं वो रिसर्च अध्ययन बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद से देश भर में दलितों और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के मामले ज्यादा बढ़े हैं।
नहीं, हमने मानते हैं कि अत्याचार क्या कहते हैं कि बढ़े हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि सबसे वो, इसलिए मैंने कहा कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आप उस एक्ट को रोकते क्यों हो?
आपकी सरकार का ही एक मंत्रालय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसने अभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशनों को ये गाइडलाइन जारी किया कि वो दलित शब्द नहीं लिखें।
शब्द को लेकर के आप सरकार को कहिएगा दलित विरोधी सरकार है क्या?
नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं, आपत्ति क्यों?
नहीं, नहीं, आपत्ति है, आपत्ति हमको भी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने लिखा अनुसूचित जाति जनजाति, और बाद में जो है उसी समय से कहा जाने लगा दलित। तो जो दलित एक्चुअल जो एक्ट होता है, एक फैक्ट होता है और एक्ट एक्ट होता है, तो जो दलित शब्द है उसका एक्चुअल मीनिंग शेड्यूल कास्ट नहीं है। दलित का मतलब ऑप्रेस्ड है। दलित आप जब लिखेंगे तो जात नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जाकर के संविधान के शेड्यूल में देखिए पासवान लिखा रहेगा आपको। इसलिए इसका यही तरीका है कि बजाय इसको तूल देने का, जो सरकारी कागजात हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स है उसमें आप अनुसूचित जाति जनजाति चलने दीजिए, जो बोलचाल की भाषा में है उसमें आप दलित आदिवासी बोलने दीजिए।
पासवान जी, आपकी पहचान जो है राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के तौर पे है, आप चीज़ों को देख भी लेते हैं उस तरह से, तो हम लोग चुनाव से कुछ महीने पहले, 6 महीने मान लीजिए पहले बात कर रहे हैं, तो अभी कहाँ होंगे पासवान जी, आप और आपकी पार्टी?
हम जहाँ जहाँ गए हैं कोई समझौता तो नहीं किए, बीपी सिंह के साथ में थे, अटल जी के समय में 3-3 बार संविधान में संशोधन हुआ, प्रमोशन में रिजर्वेशन, पदोन्नति आरक्षण को लेकर के, अभी भी मानते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ कर रहे हैं, लड़ भी क्या कहते हैं कि रहे हैं, तो हम समझौता नहीं किए। दूसरी बात है कि ये नहीं है कि हम सरकार बनी है और तब हम गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी की सरकार है, मैंने आज से नहीं, मैंने 3 साल पहले कहा था कि सरकार में कोई वैकेंसी है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर पद का कोई वैकेंसी नहीं है, बिना मतलब ये लोग हाथ पांव क्या कहते हैं भांज रहे हैं, 2024 की तैयारी करनी चाहिए, और वही आज भी हम कह रहे हैं कि भाई 2024 की तैयारी कीजिए। अब यहाँ जिस आदमी को, जिस पार्टी के पास में कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन नाम की चीज नहीं है, जिस किसी एक पार्टी के नेता को, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो या ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू, किसी को कोई नेता मानने को तैयार ही नहीं है, तो क्या फाइट करेंगे?
आप जिस पार्टी की वापसी की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल लेंगे हम, उनकी बात जब तक वो करते रहते हैं, और आप संविधान में विश्वास रखने वाले नेता रहे हैं, तो आप कितने दिन तक साथ रहेंगे, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल इससे उभरता है कि अभी जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अमित शाह जी का बयान आया कि 50 साल तक रूल करेंगे अगर हम जीतेंगे, तो इन बयानों के बीच और जिस तरह की आपकी राजनीति रही है उसमें असहज तो होते होंगे आप?
नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो सबसे बड़ी बात है जो असहज पहले वाला क्वेश्चन में मैं असहज जो आपने कहा कि कहते हैं कि आरक्षण की बात है, सरकार ने साफ तौर से कहा है और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा है कि मेरे लाश के ऊपर में क्या कहते हैं कि आरक्षण बदल सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया और दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। इस बात को तो दिमाग से देश के लोगों को हटा देना चाहिए। नंबर दो, जहां तक सरकार में बने रहने की बात है, 50 साल तक बने रहने की बात है या 5 साल तक बने रहने, ये तो जनता के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है।
इंदिरा जी को भी आपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा और उसके बाद हर प्रधानमंत्री को आपने कईयों के साथ काम भी किया है, तो अगर रेट करना हो या तुलनात्मक रूप से बात कोई बतानी हो मोदी जी के बारे में तो आप क्या बताएंगे?
नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है कि देखिए हम छह प्रधानमंत्री के साथ में काम किए हैं और इसलिए मानते हैं कि जो है जिसके साथ में हम काम करते हैं तो कोई हम शिकायत भी क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन एक बात हम जरूर कर सकते, उनको काम के अलावे कोई चीज सुझता नहीं है। फिर होती है कि यूनिक चीज है।
आपसे बातचीत हो रही हो और उसमें बिहार की बात नहीं हो तो पूरा इंटरव्यू होगा नहीं, सीटों का बंटवारा बिहार में किस तरह से होगा?
देखिए, सीटों का बंटवारा जो आप लोग कर रहे हैं वो अंदाजन है, जो अभी बात ही नहीं हुई है। जब बातचीत होगी, ठीक है, अमित शाह जी क्या कहते हैं कि नीतीश जी से क्या कहते हैं कि मिले होंगे, हमसे भी मुलाकात हुई थी लेकिन कभी सीट के संबंध में बात नहीं हुई।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से बात कर रहे थे प्रदीप कुमार। ओवल में हो रहे 5वें टेस्ट में मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। भारत को जीतने के लिए दूसरी पारी में 464 रन बनाने थे, उसमें उसने अब तक 5 विकेट पर 290 रन बना लिए हैं। हमारी साथी सुमिरन प्रीत कौर इस मैच पर नजर रखे हुए हैं, बताइए कैसा चल रहा है मैच?
जी, ऐसा है कि इंग्लैंड की तो ये पूरी कोशिश है कि जीत दर्ज की जाए, लेकिन जो भारतीय बैट्समैन हैं, जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर से भारत के 5 ही विकेट गिरे हैं और अब जो बैट्समैन हैं वो टिके हुए हैं। और जहां तक केएल राहुल और ऋषभ पंत की बात है तो ज़बरदस्त जोड़ी है इनकी जो उभर के आई है, ज़बरदस्त रन बनाए हैं इन्होंने। केएल राहुल ने तो एक शतक बनाया और उसके बाद फिर और रन बनाए, 140 रन के करीब बना लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो हैं वो अपनी सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। तो भारत के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन का यहाँ पे एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पे दिया है। और आपको ये बता दें कि भारत ने अब तक इस पूरी सीरीज़ में एक ही मुकाबला जीता है, तो भारत की भी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम ये दूसरा मुकाबला तो अपने नाम करें। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और बस कुछ ही देर की बात है कि पता लग जाएगा कि भारत के नाम है ये मुकाबला या इंग्लैंड।
हालांकि कड़ा मुकाबला है क्योंकि अभी भी करीब 2.5 घंटे का खेल बाकी
बिल्कुल,
है
बिल्कुल।
और पूरा सेशन बाकी है और यही रिकॉग्नाइज जोड़ी है, सिर्फ अजय जडेजा इसके बाद आते हैं। अगर ये लोग टिक जाते हैं तो ये एक तरह से रिकॉर्ड होगा कम से कम भारत के लिए, अगर भारत ये जीत दर्ज करता है, 4थी पारी में इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ये जीत दर्ज होती। लेकिन अभी ये बड़ी दूर की कौड़ी है, अभी तो
ये तो सुबह यही सोचा जा रहा था कि बहुत शर्मनाक हार होगी भारत के लिए। सब यही सोच रहे थे कि भारत उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने वहां पे अपने आप को जमा के रखा है क्रीज पर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमरनप्रीत। और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने बताया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा मुलाकात के लिए खत लिखा है। अमेरिका का कहना है कि वो पहले से ही एक नई मुलाकात तय करने पर विचार कर रहा है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में सड़क परिवहन निगम की एक यात्री बस आज खाई में गिर गई। इस हादसे में 53 लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारियों की भीड़ में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। यहां लोग एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को पद से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज का लंदन में निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थीं और लंदन में उनका इलाज चल रहा था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी कपिल देव सिंह के हाथों में। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।